हरे कृष्णा लेक्चर गोविंद भाई राधा कृष्ण प्रभु ऑन 22 सितंबर 2006 एट इस्कॉन बनारस।
भागवत सेवया ऐसा नहीं है कि यदि कोई धनी हो या विद्वान या उच्च कुल में जन्मा हो तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो ही जाएगा, ऐसा असंभव है। किंतु इस मामले में नारद मुनि की इच्छा थी कि नलकूबर तथा मणिदेव वासुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन करें, अतएव भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि के वचनों को पूरा करना चाहा। यदि सीधे भगवान से वर मांगने की बजाय किसी भक्त की कृपा प्राप्त की जाए तो बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की संस्कृति है, वैष्णव ठाकुर तोमार गोपुर भुलिया जान हमोरे, कृष्ण से तोमार कृष्ण दिले पार। मनुष्य को चाहिए कि भक्त के पीछे निरंतर कुत्ते के समान चलने की कामना करे। कृष्ण तो भक्त के हाथ बिके हुए हैं, अदुर्लभम आत्मभक्तौ, अतः भक्त की कृपा के बिना कृष्ण तक सीधे पहुंचा भी नहीं जा सकता। उनकी सेवा करना तो दूर रहा, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए शेवा, शुद्ध भक्त का दास बने बिना भव सागर से उद्धार नहीं हो सकता। हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में रूप गोस्वामी का अनुसरण करते हुए हमारा पहला कार्य होता है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना, आदौ गुर्वाश्रय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते, तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवर्षिर्मे प्रियतमो यदि मौ धनदात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि यद् गीतं तन्महात्मना। सर्वप्रथम भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव के करार्चित पाद पद्मों में तत्परिकर श्री ललिता देवी श्री विशाखा देवी प्रभृति अष्टवन सखी वर्ग एवं श्री रूप श्री रति मंजरि प्रभृति मंजरि वर्ग के सहित समवेत रूप में प्रणाम करने के साहचर्य रूपी कार्य में उसी श्री कृष्ण नाम एवं श्री कृष्ण प्रेम की अभूतपूर्व वन्या को मुक्त हस्त प्रदान करने वाले महावदान्य शचीसुत प्रदाता श्रीमद कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भी सुललित पादाम्बुज द्वयों में तत्परिकर श्री धाम वृंदावन स्थित श्री षड् गोस्वामी पादों सहित नतमस्तक होते हुए एवं अनंतर में पूर्वोक्त श्री कृष्ण भावना सुधारूपी अलकनंदा के प्रवाह का ब्रह्मांड व्यापी स्तरीय पुनः विस्तारित प्रवर्धन सांप्रत वेला में करने वाले श्री कृष्ण के प्रिय भक्त जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के भी अति वंदनीय चरणामृत में नतमस्तक होते हुए तदनुकंपित समस्त वैष्णव गणों को प्रणाम करते हुए एवं उपस्थित वैष्णव समुदाय का भी यथायोग्य तारतम्य भेदानुसार अभिवादन करते हुए श्रीमद् भागवतम रस सुधा आस्वादन की ओर श्री प्रमथनाथ पशुपतिनाथ विश्वनाथ शिव की नगरी काशी वाराणसी में प्रारंभ करते हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवतम संपूर्णतया भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के विषय में तथा वे भक्त जिस भक्ति रूपी साधन का अवलंबन करके उन भगवान को प्राप्त करते हैं उस भक्ति रूपी साधन के विषय में तथा वो जो भक्ति रूपी साधन के विषय श्री भगवान है और जिस भक्ति रूपी साधन का आश्रय भक्त बना हुआ है उसी भक्ति रूपी साधन का प्रयोजन अर्थात उसका विषय विग्रह श्री भगवान, इन तीनों के संबंध में श्रीमद् भागवतम की प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवतम वही है जो श्री भगवान से उनको प्राप्त कराने वाली उनकी प्रेममयी सेवा को परिचर्या को प्राप्त कराने वाली भक्ति से एवं उस प्रेममयी परिचर्या को करने वाले और जिनके बिना वह प्रेममयी परिचर्या संपन्न ही नहीं हो सकती, संपादित अनुष्ठित अनुषिविद ही नहीं हो सकती, चेष्टित ही नहीं हो सकती, कार्यान्वित ही नहीं हो सकती, उस भगवत भक्त इन तीनों से संबंध में ही श्रीमद् भागवतम का प्रयोजन है, उसका प्रवर्तन है। श्रीमद् भागवतम इन तीन विषय भक्त भक्ति एवं भगवान इन तीनों से ही संबंधित है। अतएव यहां पर एक स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा उदित हो सकती है, यदि यह श्रीमद् भागवतम नामक जो अमन पुराण है अथवा परमहंस संहिता है अथवा सर्वशास्त्र चक्रवर्ती श्रोमणि के रूप में जो विराजमान श्रीमद् भागवत है जिसके महात्म्य का वर्णन श्री गरुड़ पुराण में भगवान बादरायण कृष्ण द्वैपायन सत्यवती सुत शुकपिता एवं पराशर पुत्र तथा मैत्रेय के सखा वेद व्यास ने किया है इन शब्दों में अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणां भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिबृंहितः। अर्थात यह श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र जो कि न्याय प्रस्थान है जो कि समस्त श्रुति एवं स्मृतियों का सार संकलन है उस श्रीमद् ब्रह्म सूत्रों का भी यह श्रीमद् भागवतम भाष्य है, अर्थात उसको समझाने वाला, उसकी विवेचना करने वाला, उसका स्पष्टीकरण करने वाला ग्रंथ है। अतएव अर्थो यह ब्रह्म सूत्राणाम और उसके पश्चात भारतार्थ विनिर्णय जिसका अर्थ यह होता है कि श्री महाभारत नाम का ग्रंथ जो कि समस्त पुराणों के सार स्वरूप निर्मित किया गया था, पुराणों के अर्थों का प्रतिपादन करने के लिए बनाया गया था एवं जिसमें स्त्री शुक्र एवं द्विज बंधुओं की भी सरलता से सहजता से प्रवृत्ति है, उस श्रीमद् भागवतम की जिसमें श्रीमद् भगवद्गीता श्री सनत सुजातीय श्री नारायणीय श्री मोक्ष धर्म आदि नवनीत के समान उपाख्यान सम्मिलित है, उस श्री महाभारत जो कि शत साहस्य मयी संहिता है जिसमें 1,00,000 श्लोक विद्यमान है, उस शत साहस्री संहिता श्री महाभारत के भी तात्पर्य स्वरूप श्रीमद् भागवतम है, उस महाभारत का भी जो चरम लक्ष्य है, उसका जो अंतिम निष्कर्ष है, उसका जो अंतिम प्रयोजन है, उसका जो निर्णय है, उस निर्णय का निर्णायक श्रीमद् भागवतम है। अतएव भारतार्थ विनिर्णय और उसके पश्चात गायत्री भाष्य रूपोसौ चार वेद है, सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद एवं ऋग्वेद, इन चार वेदों का जो मूल है वह है वेद माता गायत्री जिसको ब्रह्म गायत्री कहा जाता है और यह जो वेद माता गायत्री की जिसका अवलंबन जिसकी प्रवृत्ति जिसका शुभारंभ जिसका प्रवर्तन ओंकार प्रण उद्गीत इत्यादि से होता है उसी ब्रह्म गायत्री का भी यह श्रीमद् भागवतम भाष्य है। ब्रह्म गायत्री का यह श्रीमद् भागवतम व्याख्या है, उसकी आलोचना स्वरूप है अथवा उसकी विवृति स्वरूप है। यह विवृति स्वरूप है यह पारमहंसी संहिता श्रीमद् भागवतम शुक्र शास्त्र। और उसके पश्चात गायत्री भाष्य रूपोसव वेदांत परिक्रमित तथा समस्त जो वेदों के अधूरे भाग है उन वेदों के अधूरे भागों का भी यह श्रीमद् भागवतम पूर्ण करता है। अर्थात यही एकमात्र सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र है एवं सर्वोच्च शास्त्र है। समस्त जो श्रुति है, स्मृति है, आगम है, निगम है, समस्त जो पुराण है, उपनिषद है, वेद है, वेदांत है, महाभारत रामायण आदि काव्य इतिहास है, पंचरात्र है, संहिताएं हैं, तंत्र आदि शास्त्र है, उन समस्त वैदिक शास्त्रों में यह शिरोमणि के रूप में, शिखर के रूप में, चूड़ामणि के रूप में विराजमान होता है। लेकिन इस श्रीमद् भागवतम की जिसकी महिमा अन्य समस्त धर्म ग्रंथों से एवं शास्त्रों से कहीं कहीं अधिक है, इसे श्रीमद् भागवतम में भक्ति का, भगवान का एवं भक्तों का जो विवेचन हुआ है वह तो उपयुक्त है, वह तो ठीक है। परंतु व्यभिचारी शिरोमणि जो दल कुंवर एवं मणिद्वीप के उपाख्यान का यहां पर वर्णन हुआ है वह उपयुक्त नहीं जान पड़ता। ऐसा पूर्व पक्ष संभावित होने पर, ऐसा पूर्व पक्ष, ऐसी शंका, ऐसा विपर्य, ऐसा संशय, ऐसा विषय, विषय का अर्थ होता है संशय, ऐसा विषय उपस्थित होने पर इस श्रीमद् भागवतीय श्लोक में उस शंका का निरसन करने के लिए स्वयं श्री शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यद्यपि वे व्यभिचारी शिरोमणि थे तो भी भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रिय भक्त देवर्षि नारद की कृपा से उनको भगवत कृपा प्राप्त हुई तथा वे भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। अतएव नल चुगर एवं मणिद्वीप भगवान के शुद्ध भक्त हो गए भगवत कृपा प्राप्त करके, श्री भगवान के चारों चरणार बिंदु का तथा उनके सुकोमल हस्तार बिंदु का, करार बिंदु का स्पर्श प्राप्त करके, ये जो नल कुंवर एवं मणिद्वीप थे जो कि उस समय यमन तथा अर्जुन नाम के दो वृक्षों के रूप में उत्थित थे, श्री धाम व्रज भूमि के भीतर गोकुल महावन में जहां पर नंद महाराज का आंगन है, उस गोपेंद्र उस व्रजेंद्र श्री नंदराज के प्रांगण में दो वृक्ष के रूप में देवताओं के 100 वर्ष पर्यंत खड़े थे, उत्थित अवस्था में थे। और उत्थित अवस्था में दो तरुओं का स्पर्श श्री भगवान ने किया, और जब श्री भगवान ने उन दो तरुओं का, उन दो वृक्षों का स्पर्श किया उसी समय उनका कल्याण हो गया। एवं कल्याण ही नहीं, कल्याण का तात्पर्य है कि उनकी उस स्थावर देह से, उस अचल देह से, उस अचल देह से मुक्ति हो गई, जिसका यह अर्थ है कि वो जो वृक्ष का शरीर था, वो जो वृक्ष की योनि थी, वह जो वृक्ष का देह था जिसको अचल देह माना जाता है, जो चल नहीं सकता, जो स्थावर है, जो एक ही स्थान पर स्थित होता है, फलतः वृक्ष के तक वृक्ष को स्थाणु भी कहा गया है शास्त्रों में। तो इस स्थाणु देह से, इस स्थावर देह से, इस अचल देह से उन नल कुंवर एवं मणिग्रीव इत्यादि कुबेर के दो पुत्रों की मुक्ति करके भगवान ने हम तो कल्याण संपादित किया, परंतु इससे भी परम कल्याण संपादित तब हुआ क्योंकि उस स्थावर देह से उनकी मुक्ति करना यह तो परम कल्याण भाई है। क्योंकि स्थावर देह में जाने से पहले भी तो नल कुंवर एवं मणिग्रीव जंगम थे अथवा चर प्राणी थे, अचल नहीं थे। अचल तो तब बने हैं जब वृक्ष की योनि में प्रविष्ट हुए हैं, लेकिन वृक्ष की योनि में प्रविष्ट होने से पहले भी तो उनका कल्याण कहा हुआ, जब वे चर अवस्था में थे, जब वे जंगम अवस्था में थे, जब वे स्थावर नहीं बने थे, जब वे स्थाणु नहीं बने थे, जब वे वृक्ष नहीं बने थे, जब वे गुल्म लता इत्यादि के रूप में परिवर्तित नहीं हुए थे, जब वे अचल नहीं बने थे, उससे पहले भी तो उनका कल्याण कहा हुआ था, उससे पहले भी तो वे बंद प्राणी ही थे। अतएव केवल नल कुंवर तथा मणिग्रीव इन दो भाइयों का, इन दो भ्राताओं का, इन दो सहोदरों का इस स्थावर देह से मुक्त हो जाना भी उनका परम कल्याण नहीं है। परम कल्याण तो तब हुआ है जब श्री भगवान ने उनको अपनी भाव भक्ति प्रदान की है कि जिसका वर्णन श्री नारद महामुनि ने किया है कि लब्ध भक्ति भविष्यतः लग्न भक्ति भविष्यता भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से उनको भविष्य में उनकी जो प्रेमा भक्ति है वह प्राप्त हो जाएगी। परंतु यहाँ पर भी एक शंका बनी रहती है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको प्रेम भक्ति जो कि साध्य स्वरूपा है वह साध्य स्वरूपा प्रेम भक्ति प्राप्त हुई है अथवा साधन भक्ति प्राप्त हुई है। क्योंकि यदि साधन भक्ति प्राप्त हुई है ऐसा यदि मान लिया जाए तब इसका तात्पर्य यह निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने साधन संपादित किया, श्रवण कीर्तन आदि जो नवविधा भक्ति है उस नवविधा भक्ति का संपादन किया और तत्पश्चात उनको प्रेम भक्ति की प्राप्ति हुई होगी। लेकिन इस प्रकार की शंका का खंडन हो जाता है श्रीमद् भागवत के आगामी पद्यों में कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण नलकुवर एवं मणिगिरी इन दोनों की स्तुति का श्रवण करने के पश्चात इन दोनों के स्तवन का श्रवण करने के पश्चात श्लोक में यह कहते हैं कि तदगच्छतम परमं नलकुवर साधनम संजातो मयि भावो वामीक्षितः परमो भवः। इसका यह अर्थ होता है के हे नलकुवर तथा मणिगिरी अभी आप दोनों भाई अपने अपने गृहों की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, अपने अपने आलयों की ओर अपने अपने निवास स्थानों की ओर अभी आप जा सकते हैं, आप अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर पदार्पण कर सकते हैं। और आपका गंतव्य स्थान है कुबेर, यक्षराज कुबेर का लोक, जो यक्षराज कुबेर आपके पिता है एवं जो देवताओं के खजानची माने जाते हैं, भंडारी माने जाते हैं, कोषाध्यक्ष माने जाते हैं एवं देवताओं में भी जो चार प्रकार के वर्ण परिलक्षित होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, जिसमें जो बृहस्पति आदि देवता है वे तो ब्राह्मण, इंद्र सूर्य आदि जो देवता है वे तो क्षत्रिय, यम आदि जो देवताएं हैं वे तो क्षत्रिय एवं जो कुबेर आदि देवता है वे वैश्य की श्रेणी में माने गए हैं एवं वैद्यराज जो अश्विनी कुमार तथा विश्वकर्मा आदि देवता है शिल्पिकार श्रेष्ठ वे सब शुक्र श्रेणी में माने गए हैं। इस प्रकार से देवताओं में भी जहां पर चातुर्वर्ण का विभाजन हुआ है उन चातुर्वर्ण विभक्त देवताओं में भी वैश्य स्वरूप जो कुबेर राज हैं जो कि यक्षों के राजा बने हुए हैं और जिन महाराज कुबेर के अनुज भ्राता विभीषण रावण एवं कुंभकर्ण के तीनों ही दैत्य थे उन महाराज कुबेर के जो कि धनी है उन महाराज कुबेर के जो केवल धनी ही नहीं है जो देवताओं को भी धन देते हैं इसीलिए धनद इस श्लोक में धनद आत्मजौ। और उन कुबेर राज की जो आत्मा है यहां पे आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर, आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ संस्कृत भाषा में है, मन को भी आत्मा कहा गया है, शरीर को भी आत्मा कहा गया है और जो चेतन कण है इस शरीर के भीतर विद्यमान जो चित्तकण है कि जिस चित्तकण के प्रभाव से भी हम शरीर जीवित बना हुआ है उस चित्तकण को भी आत्मा कहा गया है। जिस चित्तकण के लिए श्री भगवान वासुदेव ने भगवत गीता में यह कहा मम एवांशो जीवनो के जीव भूतः सनातनः, यह चित्तकण मेरा अंश स्वरूप है। तो इस चित्तकण को भी आत्मा कहा गया है जो कि वास्तविक आत्मा है लेकिन शरीर एवं मन इन दोनों को भी आत्मा कहा गया है। ये सभी पर्यायवाची बहुत सारे अर्थ हैं, आत्मा शब्द के भी बहुत सारे अर्थ हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर आत्मजौ यहां पर कहा गया है कि धनद आत्मजौ जो देवताओं के प्रति धन का दान करने के कारण जो धनद है धनम ददाति इति धनद देवताओं के प्रति वित्त का धन का रई का रई मुद्राओं का दान करने के कारण जो धनद है और धनद कुबेर की आत्मा अर्थात उनका जो शरीर है उनकी आत्मा से यानी कि उनके शरीर से जो जन्म को प्राप्त किए हैं वैसे धनद आत्मजौ यानी कि नल कुबेर एवं मणिगिरी। तो ये नल कुबेर एवं मणिगिरी को कहते हैं कि आप अपने पिता वैसे गुणों वाले वैसे लक्षणों वाले वैसे परिभाषा वाले वैसे अर्धघटन से संपन्न जो जिनकी संख्या है वैसे जो यक्षराज कुबेर हैं उनके गृह में आप जाइए जो कि आपका वास्तविक गृह है। लेकिन फिर कहते हैं कि मत परमो नल कुबेर सावरम जिसका अर्थ है कि आप मेरे परायण ही रहेंगे इस समय के पश्चात, इस काल के पश्चात, यह जो कृपा अनुग्रह का काल है, यह जो अनुग्रह प्रदान करने का काल है, मेरे द्वारा आपको जो अनुग्रह दिया जा रहा है, यह जो कृपा वारी वर्षा का काल है, इस प्रकार से मेघ अपने जल का जो नवीन नीरद होता है, नवीन नीरद अपने नीर का, अपने जल का, अपने तोयम का, अपने पानीयम का, अथवा अपना जो वारी है, उस वारी का पृथ्वी तल में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर परिमाण में, बाहुल्य में वर्षण करता है, आदित्य में वर्षण करता है, उसी कारण से आप भी मत परमाऊ नलक कुंवर, आपको भी मैं श्याम सुंदर मेघ के समान हूं, मैं श्याम सुंदर हूं भी। भगवान श्री कृष्ण है कहते हैं कि जिस प्रकार से मेघ भी श्याम सुंदर होता है, मेघ जो वर्षाकालीन संवर्तक मेघ इत्यादि होते हैं, वे भी श्याम सुंदर होते हैं। श्याम सुंदर कहने का तात्पर्य है कि उनका जो वर्ण है, उनका जो रंग है, उनकी जो कांति है, उनकी जो आभा है, वो आभा भी, वह शारीरिक कांति जो मेघों की होती है, वह भी श्याम ही होती है, कृष्ण वर्ण की काली ही होती है। तो मैं भी तो श्याम सुंदर हूं, मैं थोड़ी हूं मेघों से कोई विजातीयता संपन्न हूं अथवा विलक्षणता संपन्न हूं, नहीं, मैं भी तो वैसा ही हूं, मैं भी तो उनका सजातीय ही हूं। मेरा भी जो शरीर है, सच्चिदानंद में जो विग्रह है, वह भी श्याम वर्ण का है, इसलिए मेरे अंदर भी वैसा ही रंग होने के कारण जैसा कि वर्षाकालीन मेघों का है, मेरे अंदर वर्षाकालीन मेघों के गुण भी है। वर्षाकालीन मेघों का क्या धर्म है, वर्षाकालीन मेघों का क्या गुण है, क्या धर्म है उनका, उनका धर्म है पृथ्वी तल पर वर्षा करना। वैसे मेरा धर्म भी यही है, मैं भी श्याम सुंदर हूं, मेरा धर्म भी यही है कि मैं भी कृपा वारी का वर्षण करता हूं, अनुग्रह वारी का वर्षण करता हूं, मैं प्रसाद का वर्षण करता हूं, मैं उस लौकिक जल का वर्षण नहीं करता, वो जो लौकिक जल है उस लौकिक जल का मैं वर्षण नहीं करता, मैं अपनी जो कृपा शक्ति है उस कृपा शक्ति का दान देता हूं, उसका मैं वर्षण करता हूं, इसलिए मैं भी श्याम सुंदर हूं। तो मैंने देखा है कि आप मेरे परायण हो, मत पर हो, इसलिए मैं आपके ऊपर कृपा वारी का वर्षण कर रहा हूं, और इसके पश्चात आप लोगों के भीतर मेरे प्रति जो भाव भक्ति है, जो प्रेम भक्ति है, वह जागृत होगी। संजातो मई भावो वामिक्सित परमो भव, जिस भाव भक्ति को, जिस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की आप बहुत काल से इच्छा कर रहे थे, इप्सित, उस आपके द्वारा इच्छित, आपके द्वारा अभिक्षित, आपकी अभीष्ट स्वरूपा, आपके द्वारा अभिलषित, आपके द्वारा वांछित जो प्रेमा भक्ति है मेरे चरणारविंदों में, उस प्रेमा भक्ति की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इस काल के पश्चात जब मैंने आपके ऊपर अनुग्रह संपन्न किया है, इस अनुग्रह प्रदान रूपी काल के पश्चात आपके भीतर तत्क्षण इसी समय अपने हृदयों में मेरे प्रति जो प्रेमा भक्ति है वह सुदृढ़ हो जाएगी। संजातो मई भावो वामिक्सित परमो भव, इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ने साध्य स्वरूप जो भावात्मक का जो प्रेम भक्ति है, उस प्रेम भक्ति का अवदान वरदान दे दिया है, यानी कि अब इन नलकुंवर मणिग्रीव इत्यादियों को साधन भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीन प्रकार के भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध एवं कृपा सिद्ध। ये कृपा सिद्ध की श्रेणी है, क्योंकि जो नित्य सिद्ध परिकर है वे तो भगवान की स्वरूप शक्ति से प्रकट होते हैं या अवस्था शक्ति से प्रकट नहीं होते, और नित्य सिद्ध परिकरों के उदाहरण है दास्य रस में रक्तक पत्रक चित्रक आदि, सत्य रस में श्रीराम सुवर मधुमंगल स्तोम कृष्ण अर्जुन वरुथम इत्यादि, एवं महावात्सल्य रस में नंद यशोदा कीर्तिदा वृषभानु सुनंद उपनंद इत्यादि, मुखरा इत्यादि पौर्णमास इत्यादि, एवं महा श्रृंगार रस में श्री चंद्रावली श्रीमती राधिका शैल्या पालिका भोपाली तारका ललिता विशाखा रूप मंजरी, एवं यदि द्वारका की बात की जाए तो देवकी वसुदेव सत्य भामा रुक्मिणी और उद्धव इत्यादि जो परिकर है वे भगवान कृष्ण की लीला के नित्य परिकर है, नित्य सिद्ध परिकर है, जिसका तात्पर्य यह है कि वे समस्त परिकर भगवान की जो अंतरंगा स्वरूप शक्ति है उस स्वरूप शक्ति से प्रादुर्भूत होते हैं, वे तटस्था प्रकृति से प्रादुर्भूत नहीं है और वे कभी माया में गिरते भी नहीं है। वे अनादि काल से, सनातन काल से भगवान की सेवा करते आ रहे हैं, कर रहे हैं एवं करेंगे भविष्य काल में। जबकि इनकी तुलना में जो तटस्था प्रकृति की अभिव्यक्ति स्वरूपा जो बद्ध जीवात्माएं हैं इस संसार की, वे जब साधु गुरु और वैष्णव तथा हरि के कृपा प्रसाद को प्राप्त करते हैं। और जब ब्रह्मांड भ्रमित कौन भक्तिमान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद ने माय भक्ति लता बीज, जब इस प्रकार से उनको गुरु तथा वैष्णव की कृपा से भगवान की भक्ति का बीज प्राप्त होता है, उस श्रद्धा रूपी बीज को प्राप्त करने के पश्चात जो साधन भक्ति में प्रवृत्त होते हैं और अनेक अनेक जन्मों के पश्चात साधन भक्ति के फल स्वरूप उनको जब प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है, उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के पश्चात जो भगवत धाम गोलोक वृंदावन वैकुंठ इत्यादि में गमन कर सकते हैं, पदार्पण कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, वो तो साधन सिद्ध ठहरे है। परंतु कृपा सिद्ध कौन है? कृपा सिद्ध है ऐसी बद्ध जीवात्माएं जो कि तटस्था प्रकृति से ही उत्पन्न है, स्वरूप शक्ति से उत्पन्न, तो केवल भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है, जो कदापि माई संसार में नहीं आते, जो अनादिकाल से भगवान की सेवा कर रहे हैं। परंतु तटस्था प्रकृति से ही उत्पन्न जो कुछ बद्ध जीवात्माएं हैं, और ऐसी जीवात्माएं बहुत ही विरली होती हैं, बहुत ही विरली, कदाचित एक युग में 3 या 4 से अधिक जीवात्माएं नहीं होंगी। तो ऐसी जीवात्माएं बहुत ही विरली होती हैं, सुदुर्लभ होती है, और ऐसी कुछ सुदुर्लभ जीवात्माएं होती हैं कि जिनको भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कृपा करके सिद्ध बना देते हैं, उनको अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर देते हैं, और फिर उनको उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए अनेक जन्म जन्मांतर तक साधन भक्ति करनी भी नहीं पड़ती। ये नंद कुंवर एवं मणिपुरी उस कृपा सिद्ध भक्तों के उदाहरण स्वरूप है। जबकि हम जैसे जीवात्माओं के लिए तो साधारण सामान्य श्रेणी के जो जीवात्मा है, उन सामान्य श्रेणी के जीवात्माओं के लिए अनेक अनेक जन्मों के अंतराल तक जो है साधन भक्ति का अनुष्ठान करने के पश्चात कहीं जाकर साध्य स्वरूपा, फल स्वरूपा, परिणाम स्वरूपा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन यहां पर तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रेम भक्ति प्रदान कर दी है। तो यहां पे कोई ऐसा तर्क कर सकता है कि नहीं, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने यह कहा है कि सच्चा तो मई भावो वाम इच्छित परमो भव, आप लोगों के द्वारा आज तक जिस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा की जा रही थी, अथवा आप लोगों के मन में चित्तों में तथा आप लोगों का जो मानस पटल है, आप लोगों के उन मानस पटलों के ऊपर आप लोग जिस मेरे चारों चरणारविंदों के प्रति प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा को प्रस्थापित करते आ रहे थे अथवा प्रकट करते आ रहे थे, वो आपकी जो चिरकालीन इच्छा है प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की, वह अब पूरी होगी। तो इससे कोई व्यक्ति ऐसा पूर्वपक्ष कर सकता है कि नहीं, ये जो इच्छा है नंद कुंवर एवं मणिग्रीव की उनको प्रेम भक्ति प्राप्त करना भी चाहते थे, यह इच्छा नारद मुनि का जब उनको शाप मिला, उस शाप मिलने के पश्चात जब वे वृक्ष की होली में प्रविष्ट हुए, उसी समय से ये नंद कुंवर एवं मणिग्रीव इच्छा कर रहे थे कि हमें भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। तभी तो आज भगवान यह कह रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा चिर आकांक्षित जो प्रेमा भक्ति है, उस प्रेमा भक्ति को मैं अभी इस समय आप लोगों को दे रहा हूं। तो इसका यह तात्पर्य निकलता है कि ये जो प्रेमा भक्ति है वो चिर आकांक्षित है। नंद कुंवर एवं मणिग्रीव जिस समय वृक्ष की योनि में प्रविष्ट हुए, उसी समय से वे प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा का पालन पोषण करते आ रहे थे अपने अपने मानस पटलों के भीतर। तो कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि इसका अर्थ तो यह हुआ कि वे साधन भक्ति ही कर रहे थे। देवताओं के 100 वर्ष पर्यंत, 100 वर्ष अवधि पर्यंत जब वे उस वृक्ष की योनि में खड़े हुए थे, उस उन देवताओं के 100 वर्ष तक जबकि वे वृक्ष की योनि में थे, उस लंबे सुदीर्घ काल में, उस विस्तृत आगामी काल में ये जो नंद कुंवर एवं मणिग्रीव है, ये भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रख रहे थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वे साधन भक्ति कर रहे थे। क्यों इसका यह अर्थ हुआ कि वे साधन भक्ति कर रहे थे? क्योंकि साधन भक्ति की परिभाषा ही रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिद्ध में यह दी है कि कृति साध्या भवे साध्य भावा, अर्थात जिस साधन भक्ति में प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने की अभिलाषा का पोषण किया जाए वही साधन भक्ति है। जिस अवस्था में प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा भक्त के मन में रहे वह अवस्था ही साधन भक्ति है। वह साधन भक्ति नहीं कि जिसका प्रयोजन प्रेम भक्ति न हो, वह साधन भक्ति नहीं है जिसका प्रयोजन भक्ति हो, मुक्ति हो अथवा सिद्धि हो। साधन भक्ति वही है कि जिसका प्रयोजन प्रेम भक्ति को प्राप्त करना हो। अतएव यहां पे भगवान ने यह कहा कि नलकोर एवं मणिग्रीव आप दोनों बहुत काल से मेरी प्रेम भक्ति को प्राप्त करना चाह रहे थे। इस काल की वृक्ष की गोली में जब वे 100 वर्ष तक खड़े हुए थे वे प्रेम भक्ति को प्राप्त करना चाहते थे अर्थात वे साधन भक्ति कर रहे थे, क्योंकि साधन भक्ति का प्रयोजन प्रेम भक्ति होता है। जिसका प्रयोजन भक्ति है सांसारिक भोग है, जिसका प्रयोजन मोक्ष है और जिसका प्रयोजन योग की 8 सिद्धियां हैं वो साधन भक्ति नहीं हो सकती भक्ति रसामृत संघ की परिभाषा के अनुसार। ऐसे में यही निष्कर्ष निकलता है कि इनका प्रयोजन प्रेम भक्ति प्राप्त करने का था, इसलिए इन्होंने साधन भक्ति संपन्न की है। और भागवत में उल्लेख भी है कि जब तक ये नलकोर एवं मणिग्रीव 100 वर्ष तक देवताओं के सुरों के आदित्यों के 100 वर्ष तक उस वृक्ष की योनि में थे उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन किया। तो क्या स्मरण करना एक साधन भक्ति का अंग नहीं है? श्रवणम कीर्तनम प्रश्नम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये जो नवदा भक्ति है जो 9 प्रकार की साधन भक्ति है उसमें से एक अंग है स्मरण करना। तो इन नलकूपर एवं मणिग्रीव ने वृक्षों के शरीर में इतने 100 वर्ष तक रहे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, ऐसा श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है। तथा उसी समय से वे इच्छा रख रहे थे कि हमें प्रेम भक्ति प्राप्त हो। अर्थात इन दोनों कारणों से ऐसा लगता है, ऐसा निश्चित हो जाता है बिना शंका के कि वो साधन भक्ति कर रहे थे। क्योंकि साधन भक्ति इनका प्रयोजन प्रेम भक्ति है और प्रेम भक्ति की वे पहले से इच्छा रख रहे थे। ये बात भगवान के वचनों से साबित हो जाती है कि प्रेम इच्छिता, आप लोग जो है प्रेम भक्ति की इच्छा बहुत पहले से रख रहे थे, इसलिए जहां पर प्रेम भक्ति की प्राप्ति की इच्छा है वही साधन भक्ति। ये तो पहला कारण है कि वो साधन भक्ति कर रहे थे। और दूसरा कारण यह है कि जितने समय तक वृक्ष की योनि में थे उतने समय तक वो भगवान कृष्ण का चिंतन करते आ रहे थे। इन दो कारणों से प्रमाणित हो जाता है कि वे साधन भक्ति कर रहे थे। और यदि साधन भक्ति कर रहे थे और साधन भक्ति को करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उनको उस स्थावर के दिन से मुक्ति प्रदान करके यदि उनको प्रेम भक्ति प्रदान की हो तब तो वे कृपा सिद्ध नहीं कहे जा सकते, तब तो फिर उनको साधन सिद्ध मानना पड़ेगा। लेकिन नहीं, वो कृपा सिद्ध भी है। जबरदस्ती क्यों आप ऐसा कहना चाहते हैं? बलपूर्वक आप ऐसा क्यों अपना मत यहां पे प्रस्थापित करना चाहते हैं? इसीलिए प्रस्थापित करना चाहते हैं कि साधन भक्ति केवल मानव शरीर में हो सकती है, अन्य शरीरों में नहीं। यदि अन्य शरीरों में स्मरण रूपा साधन भक्ति की जाए तो वो साधन भक्ति नहीं कहलाती, इसलिए उनको कृपा सिद्ध ही मानना पड़ेगा। उन्होंने वृक्ष के शरीर में यदि भगवान का चिंतन किया भी हो तो वो साधन भक्ति नहीं है, क्योंकि साधन भक्ति एकमात्र मानव शरीर में ही संपन्न हो सकती है। इसीलिए तो कहा गया है शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, ये जो मानव शरीर है यही एकमात्र भगवत भक्ति जो कि परम धर्म है। समय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे, इस परम धर्म को करने का एकमात्र जो साधन है वो मानव शरीर है। यदि अन्य शरीरों में भी वह भक्ति का अनुष्ठान किया जा रहा है तो वो साधन भक्ति नहीं मानी जा सकती। भले ही फिर उस भक्ति से प्रसन्न हो कि भगवान क्यों न जो है उनको प्रेम भक्ति प्रदान कर दे, उस भक्ति को साधन भक्ति नहीं कहा जा सकता। इसलिए यही मानना पड़ेगा कि नलकोर एवं मणिग्रीव ने साधन भक्ति नहीं की है, उनको भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कृपा करके ही कृपा सिद्ध बना दिया है। और झट से प्रेम भक्ति तत्क्षण शीघ्र सत्वर रूप से अर्थात उसी क्षण उनको प्रेम भक्ति प्रदान करनी है बिना साधन संपादित किए हुए, यही मानना पड़ेगा। अतएव यहां पर ये जो शंका थी कि वे कृपा सिद्ध नहीं हो सकते साधन सिद्ध ही है, इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष था उस पूर्व पक्ष का खंडन कर दिया। अब इसके पश्चात जो वर्तमान का श्लोक है उस वर्तमान के श्लोक की कुछ विस्तारित रूप से व्याख्या करते हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि देवर शिर में प्रियतम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपने अपने साधन के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया है। ऐसा मत मानना कि आपने अपने साधन से मुझे प्राप्त किया है, आप साधन से हो ही नहीं। आपने तो मेरे परम भक्त जो देवर्षि नारद हैं वो देवर्षि नारद की कृपा से मुझे प्राप्त किया है। और यदि कहो कि नहीं, भले ही मनुष्य शरीर में की जाने वाली भक्ति ही साधन भक्ति मानी जाए, अन्य योनियों में संपादित की जाने वाली जो भक्ति है उसको साधन भक्ति न मानी जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने स्मरण तो किया था भगवान का 100 वर्ष पर्यंत जब तक वो देव उस वृक्ष योनि में रहे, तो क्या ही भक्ति नहीं है? नहीं, क्योंकि उस भक्ति को करने के पहले ही देवर्षि नारद ने उनको कह दिया था कि आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होगी। वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छत् वृत्ते स्वर्णोगतां भूयो लब्धभक्तिः भविष्यतः स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। श्लोक 21 और 22 में श्री नारद जी ने कल दिया है इनको शाप देते समय कि आप लोगों को देवताओं के 100 वर्ष पर्यंत इस वृक्ष की योनि में रहने के पश्चात भगवान वासुदेव का सान्निध्य, उनका सामीप्य प्राप्त होगा, उनका सत्संग प्राप्त होगा, उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन इत्यादि हो जाएगा और उसके पश्चात आपको भगवान की प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, लब्ध भक्ति भविष्यतः। इसलिए नारद जी ने जो पहले ही कह दिया है कि आपको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसका मतलब कि उनको साधन भक्ति करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए किसी भी ढंग से यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने 100 वर्ष पर्यंत वृक्ष की योनि में रहकर जो स्मरण रूपा भक्ति संपादित की है, उस स्मरण रूपा भक्ति का यह फल है कि आज भगवान उनको अपनी प्रेम भक्ति दे रहे हैं। इस प्रकार का मंतव्य किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस स्मरण रूपा भक्ति को करने से पहले भी, उस वृक्ष योनि में जाने से पहले ही नारद जी ने उनको कह दिया है कि लब्ध भक्ति भविष्यति, आपको भगवान की प्रेमा भक्ति की जो प्रयोजन स्वरूपा है, जो कि साध्य है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उनको साधन सिद्ध किसी भी प्रकार से नहीं माना जा सकता। तो इस सिद्धांत का विवेचन करने के पश्चात इस श्लोक में कहा गया है देवर्षि में प्रियतम, ये जो देवर्षि नारद है ये मेरे प्रियतम भक्त है। अब यहां यह जानना आवश्यक है कि ऋषि कितने प्रकार के होते हैं। ऋषि शब्द का अर्थ है जो सात्विक भोजन करे तथा जिसका निवास स्थान सात्विक हो। यानी राजा जो कि क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होता है, वह भी यदि राजपाट इत्यादि का परित्याग करके वन में चला जाता है और यदि वन में जो मृणाल है, जो कंदमूल है इत्यादि का भक्षण करता है और सात्विक भोजन का भक्षण करके सात्विक जीवन यदि व्यतीत करता है तो वह राजर्षि। लेकिन उस राजर्षि से भी उत्कृष्ट होता है ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि का अर्थ है ऐसा ब्राह्मण जो वन में जाकर या तो अपनी पत्नी के साथ निवास करे या सन्यासी होकर निवास करे, जैसे भी निवास करे, लेकिन मैथुन का परित्याग कर दे। मैथुन का परित्याग करने से एवं सात्विक भोजन करने से एवं सात्विक जीवन अरण्य में व्यतीत करने से भी ऋषि हुआ जा सकता है। तो या तो अपनी अर्धांगिनी के साहचर्य में या अर्धांगिनी से मुक्त होकर सन्यास आश्रम स्वीकार करके, जैसे ही यदि कोई ब्राह्मण वन में निवास करता है और सात्विक जीवन व्यतीत करता है वह ब्रह्मर्षि। लेकिन उसके पश्चात ब्रह्मर्षि से भी अधिक श्रेष्ठ पदवी है देवर्षि, जिसको सुर ऋषि भी कहा गया है। सुर अथवा देवताओं के ऋषि, देवताओं में जो ऋषि है, श्री नारद देव योनि में माने जाते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए देवताओं की योनि में उनको माना गया है, वो देवताओं की योनि में। लेकिन देवताओं में भी समस्त इंद्र आदि देवताओं से विजातीय विलक्षण इसीलिए हो गए हैं, पृथक भिन्नता उनमें इसीलिए आ गई है, क्योंकि ये जो इंद्र चंद्र सूर्य यम आदि देवता है वो तो समस्त भोगवादी है और ये नारद महामुनि भगवान के परम भक्त तथा परम वैराग्य इत्यादि तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के कारण ये देवताओं में ऋषि है। जबकि वो अन्य देवता ऋषि संज्ञा से अभिहित होने के, संगीत होने के, उस अभिधान को धारण करने के लायक, काबिल अथवा योग्य नहीं माने जा सकते। इसलिए देवताओं में देवल पर्वत एवं नारद इन तीन ऋषियों को ही देवर्षि माना गया है। और इसके पश्चात इससे भी जो अधिक उन्नता श्रेणी है, उत्कृष्ट श्रेणी है, पराकाष्ठा वाला जो स्तर है ऋषियों में, जो सर्वोत्तम विभाग है ऋषियों में, वह विभाग कौन सा है, वह तल कौन सा है, वह स्तर कौन सा है, वह तल वह स्तर वह विभाग है परमर्षि। परमर्षि केवल सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चार कुमारों को ही शास्त्रों में कहा गया है परमर्षि देवर्षि से भी श्रेष्ठ है। और ये परमर्षि देवर्षि नारद से क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि सनत कुमार इत्यादि जो चार परमर्षि हैं, इन्होंने श्री नारद महामुनि जो कि देवर्षि श्रेष्ठ है, सुरर्षि श्रेष्ठ है, सुरर्षि सप्तम जो सुरर्षियों में भी श्रेष्ठ है, इन देवर्षि नारद को हरिद्वार गंगा द्वार में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महात्म्य पद्म पुराण में अच्छी तरह से सुचारू रूप से किया गया है। इसीलिए भागवत परंपरा में, ये जो भागवत परंपरा है, उस भागवत परंपरा में देवर्षि नारद के भी गुरु ब्रह्मा जी के चार पुत्र चतुर्सन चार कुमार होने के कारण चार कुमार परमर्षि श्रेणी में गिने जाते हैं और नारद को देवर्षि श्रेणी में। लेकिन एक दूसरा कारण है कि नारद को परमर्षि क्यों नहीं कहा गया। वैसे तो चार कुमार भी देवताओं की ही योनि में, चार कुमार भी भगवान ब्रह्मा की मानस प्रजा होने के कारण, उनकी मानसी सृष्टि से उत्पन्न होने के कारण, उनकी मानसी सृष्टि से आविर्भूत होने के कारण ये जो चार कुमार हैं वे भी देवताओं की ही योनि में माने गए हैं, क्योंकि देवता ब्रह्मा से उत्पन्न है, उनकी मानस सृष्टि से। जो देवताओं जो मनु तथा शत्रुपाल की औरस सृष्टि से उत्पन्न है वे सभी देवता नहीं माने जाते। मनु एवं शत्रुपाल का जो मैथुनात्मक संयोग है, समागम है, उसके द्वारा शुक्र तथा शौनिक के मिश्रण से जो शौक्र परंपरा के आधार पर औरस सृष्टि से जो मानव समुदाय उद्भूत है वह देवता नहीं, क्योंकि देवता समस्त ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि है, शुक्र शौनिक के मिश्रण से उत्पन्न नहीं होते। जबकि मानव शुक्र शौनिक के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं, जो इंद्र आदि समस्त देवता है ये ब्रह्मा जी के संकल्प से ही उनके मन से ही प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए ये जो चतुर्सन है, ये चतुर्सन ब्रह्मा जी की सबसे पहले मानस सृष्टि होने के कारण, और ये जो देवर्षि नारद है ये देवर्षि नारद ब्रह्मा जी की द्वितीय मानस सृष्टि होने के कारण, यदि ब्रह्मा जी यदि देवर्षि नारद को देवयोनि के अंतर्गत मान लिया जाए तो ये जो चतुर्सन है उनको क्यों देवयोनि के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, उनको भी देवयोनि के अंतर्गत माना जाएगा, तो फिर उनको देवर्षि क्यों नहीं कहा गया नारद के समान, उनको परमर्षि क्यों कहा गया। परमर्षि इसलिए कहा गया क्योंकि नारद का फिर भी एक बार बाहरी दृष्टि से कम बाहरी दृष्टि से आपात दृष्टि से तो पतन देखा ही गया है जब विश्व मोहिनी का प्रसंग हुआ है, लेकिन वो चार कुमार हैं उनका पतन कदापि नहीं देखा गया, निश्चित ब्रह्मचर्य के मार्ग से भी कदापि स्खलित नहीं हुए। इसीलिए नारद जी को तो स्त्री पुरुष इत्यादि जो भेद है उसका ज्ञान है, परंतु इनको चार कुमारों को इसका ही ज्ञान नहीं। तभी तो नारद जी को स्त्री पुरुष भेद का ज्ञान है, तभी तो श्राप दे दिया है नरक और मणिग्रीव को जब स्त्रियों के साथ भग्नावस्था में रमण कर रहे थे। और यहां पर जो सुखदेव गोस्वामी है और चार कुमार है ये परमर्षि की श्रेणी में है, क्योंकि इनको जो स्त्री पुरुषों के भेद का जो ज्ञान है वह ज्ञान भी नहीं है, इसलिए वो परमर्षि की श्रेणी में। नहीं तो चार कुमार भी देवताओं की योनि में है, वो ब्रह्मा जी की पहली मानस प्रजा है, नारद जी तो दूसरी मानस प्रजा की श्रेणी में है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहली जो मानसी सृष्टि है उसमें चार कुमारों को प्रकट किया, और जो द्वितीय मानसी सृष्टि है उसमें नारद को प्रकट किया है। तो यदि नारद को देवयोनि में माना जाए तो चार कुमारों को देवयोनि में क्यों नहीं माने, उनको भी देवयोनि में मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो देवर्षि न होने, फिर भी वो देवर्षि नहीं है, परमर्षि है, देवताओं के ऋषि नहीं है, परमर्षि है। और इसीलिए क्योंकि उनको किसी भी परिस्थिति में ये जो काम विकार है वो किसी भी परिस्थिति में उनको प्रभावित ही नहीं करता, आपात दृष्टि से भी प्रभावित नहीं करता। वैसे तो नारद महामुनि को भी काम विकार ने प्रभावित नहीं किया है, वो तो भगवान की इच्छा से नारद महामुनि उस विश्व मोहिनी के प्रति आकर्षित हुए हैं। माया का साहस नहीं है कि वो नारद महामुनि का स्पर्श कर सके, जो माया है त्रिगुणात्मिका भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा, इसका तो साहस ही नहीं है कि वो भगवान की परम भक्त नारद का स्पर्श कर सके, क्योंकि भगवान के लिए जो नित्य सिद्ध परिकर है अथवा जो ये उच्च श्रेणी के जो कृपा सिद्ध अथवा साधन सिद्ध परिकर है उनका स्पर्श माया नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी केवल भगवान की इच्छा से ही देवर्षि नारद उस विश्व मोहिनी के प्रति आकर्षित हुए हैं, न कि माया के प्रभाव में आने के कारण। इसलिए देवर्षि नारद को केवल बाहरी दृष्टि से आपात दृष्टि से ही काम विकार से प्रभावित माना जा सकता है, वास्तविक दृष्टि में नहीं। लेकिन चार कुमारों तथा सुखदेव गोस्वामी इनके संबंध में तो कोई आपात दृष्टि भी नहीं है कि जिस आपात दृष्टि के आधार पर, जिस बाह्य दृष्टि के आधार पर उनको काम विकार से कदापि प्रभावित होते हुए देखा गया, इसलिए वो परमर्षि हैं। ये दूसरा कारण है, देवताओं की योनि में होने पर भी चार कुमार परमर्षि हैं, देवर्षि हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने ये नलकुंवर मणिग्रीव को देवर्षि कहा, ये सार्थक ही, ये जो संज्ञा दी है, ये जो विधान दिया है, ये जो नाम दिया है, ये सार्थक ही है, आप देवताओं के ही ऋषि हैं हे नारद। परंतु यहां पर नारद को प्रियतम कहा गया है कि नारद मेरे प्रियतम भक्त है। देखिए तीन प्रकार के होते हैं, प्रियतर, प्रिय, प्रियतर एवं प्रियतम। जो प्रिय हो वह तो, जो सामान्य श्रेणी का प्रिय हो वह प्रिय, जो उससे अधिक प्रिय हो वह प्रियतर, और जो सर्वाधिक प्रिय हो वह प्रियतम, वह प्रियतम। तो यहाँ पर यह शंका उदित होती है, जागृत होती है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कई बार शास्त्रों में, जैसे आदि पुराण है, आदि पुराण इत्यादि शास्त्रों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय बताया है। आदि पुराण में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तुम मेरी अपनी आत्मा से भी मुझे अधिक प्रिय हो, जितने प्रिय मुझे शंकर नहीं है, जितने प्रिय मुझे ब्रह्मा नहीं है, और जितने प्रिय मेरी लक्ष्मी नहीं है, और जितना प्रिय मुझे अपना शरीर और मेरी आत्मा नहीं है, उतने प्रिय तुम हो मेरे। और कई बार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे भागवत में भी कि आत्मयोनि शंकर है, कि आत्मयोनि, आत्मयोनि का अर्थ ब्रह्मा, जो कि मेरी आत्मा से प्रकट हुए हैं। तो ये जो आत्म ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा भी मेरे उतने प्रिय नहीं है, शंकर भी उतने नहीं है, लक्ष्मी रमा भी उतनी प्रिय नहीं है, स्वयं मैं भी उतना प्रिय नहीं हूं, मेरी आत्मा भी, मेरे जो प्राण है वो भी मेरे लिए उतने प्रिय नहीं है जितना ही उद्धव तुम मेरे लिए प्रिय हो। तो उद्धव एवं अर्जुन, इन दोनों के लिए ऐसा कहा गया है कि तुम मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हो। लेकिन उसके पश्चात पद्म पुराण में भी ये भी कहा गया कि यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याः कुण्डं प्रियंतः सर्वगोपेषु सैवेदा विष्णु अत्यंत वल्लभा, कि समस्त गोपियों में एकमात्र श्री राधा ही श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रियतमा है। और फिर बृहद भागवतम प्रथम इत्यादि शास्त्रों में देखने पर, तथा जो श्रीमद् भागवतम का जो दशम स्कंध का जो रास पंचाध्याय का अंतिम भाग है, उसमें जहां पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने न पा रही हम निर्वृत्य समझना ये कहा है कि हे गोपियां, आप ही मात्र मेरी ऐसी भक्ता हुई हूं आज तक के इतिहास में, जिसका ऋण मैं भगवान को चुकाने में असमर्थ हूं। आपकी साधुता भी आपका ऋण है, आपकी जो मेरे प्रति भक्ति है वही आपके ऋण का फल है। मेरे पास ऐसा कोई सामर्थ्य था, मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है, था मार्ग नहीं है जिसके द्वारा आपके द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति का जो ऋण है वो मैं चुका सकूं। जबकि भगवान ने किसी भी अन्य भक्त के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसलिए अंत में तो यही देखा जाता है कि गोपियां ही भगवान श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रियतमा है, और उनमें भी एकमात्र श्रीमती राधिका ही सर्वश्रेष्ठ भक्ता है। पूरे आध्यात्मिक भौतिक दोनों जगतों को मिलाकर, तथा इन आध्यात्मिक भौतिक जगतों में भूत काल, भविष्य काल एवं वर्तमान काल, तीनों कालों में मिलाकर, तथा इन आध्यात्मिक भौतिक संसार के जितने भी प्राणी हैं तथा जितने भी स्थान हैं इन दोनों ही जगतों में, इन समस्त स्थानों को मिलाकर जितने भी भगवान श्री कृष्ण के तथा उनके जो विष्णु राम इत्यादि अन्य अवतार हैं, उनके जितने भी उपासक अथवा भक्त मिलते हैं, उन समस्त भक्तों में श्रीमती राधा ही सर्वश्रेष्ठ है। यह सिद्धांत तो हमारे महाप्रभु चैतन्य देव के गौरी संप्रदाय का अंतिम सिद्धांत है, और समस्त भागवत इत्यादि शास्त्रों ने भी इसका अनुमोदन किया है। तो फिर यहां पर नारद जी को एवं ये जो उद्धव है एवं जो अर्जुन है, तथा भागवत के अंत में यह कहा गया कि वैष्णवानं यथाशंभुः, कि वैष्णव में एकमात्र शंभु ही श्रेष्ठ है, ये सब फिर क्यों पाया जाता है जब राधा ही तथा गोपियां ही एकमात्र उनकी प्रियतमा है, तो फिर इन अन्य व्यक्तियों को भी क्यों भगवान का प्रियतम बताया जा रहा है? वह इसीलिए कि अपेक्षाकृत दृष्टि है। गोपियां भी प्रियतमा है, श्रीमती राधिका भी प्रियतमा है, उद्धव भी प्रियतम है, और नारद भी यहां पर प्रियतम है, देवर्षि में प्रियतम हो, और अर्जुन भी प्रियतम है, शंभु भी वैष्णव में श्रेष्ठ होने के कारण वैष्णवानं यथाशंभुः भगवान की प्रियतम है। लेकिन ये सभी अपेक्षाकृत दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से प्रियतम है, जबकि भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, लालिनी शक्ति श्री राधा, उनकी आत्यंतिक दृष्टि में प्रियतमा है। इसका क्या तात्पर्य है कि आत्यंतिक दृष्टि एवं तुलनात्मक दृष्टि, अपेक्षाकृत दृष्टि, इसका क्या अर्थ निकलता है? हां, जिस प्रकार से शास्त्रों में निराकार ब्रह्म का जो सुख है, उस निराकार ब्रह्म ज्योति में प्राप्तव्य अर्थात प्राप्त होने वाले सुख को अनंत कहा है। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव का कहने नायम नहीं हो ले भाजा मुद्रो के कष्टान कामान अर्भती विड़ भुजाम ये तको दिव्यम पुत्र का ये सत्रम शुद्धेद्यस्मान ब्रह्म सौख्यम तमनंतम। ये जो निराकार ब्रह्म का सुख है वह अनंत है, लेकिन फिर वह निराकार ब्रह्म का अनंत सुख, इसको भागवत में अनंत कहा गया है, वह भी नारद पुराण की हरिभक्ति सुदोदय आदि प्रकरणों को देखने से तथा भागवत की अन्य प्रकरणों को देखने से, कि जहां पर यह कहा गया है कि जहां पर जिन तत्त स्थानों में जहां पर यह उक्ति हुई है अथवा यह संवाद अथवा यह आदेश पाया जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की प्रेम भक्ति है, वह प्रेम भक्ति साक्षात अमृत के समान है, रस स्वरूपा है। उस रसामृत स्वरूपा प्रेम भक्ति वह एक सागर के समान, बूंदी के समान, सिंधु के समान है, तथा उस प्रेम भक्ति के जो आनंद का सागर है, उस प्रेम भक्ति से प्राप्त होने वाले आनंद के सागर के एक बूंद के बराबर, एक बिंदु की तुलना में भी निराकार ब्रह्म का जो आनंद है वो नहीं आ सकता। इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवत में तथा नारद पुराण के हरिभक्ति सूर्योदय इत्यादि प्रकरणों में कहा गया है, वहां भी यही प्रतीत होता है कि भागवत में जहां पर ऋषभदेव कहते हैं कि निराकार ब्रह्म का सुख अनंत है, वह अनंत निराकार ब्रह्म का सुख भी जब भक्ति रस के सुख की तुलना में आता है, भगवत भक्ति रस सुख की तुलना में आता है, तो वो अनंत निराकार ब्रह्म का सुख भी सीमा वाला, मर्यादा वाला तथा अंत वाला हो जाता है। इसलिए सब अपेक्षाकृत दृष्टि है, केवल तुलनात्मक दृष्टि है। निराकार ब्रह्म के सुख को जो अनंत कहा गया है, वो भौतिक संसार के विषयों के सुख की तुलना में अनंत कहा गया है, न कि भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाकर पार्षद शरीर प्राप्त करके उनकी जो सच्चिदानंदमयी सेवा है, उस सेवा से प्राप्त होने वाले सुख के पूरे सामने तो वो बिंदु के भी बराबर नहीं है, वो अनंत सुख है। इसीलिए भगवत भक्ति के सुख के समक्ष और निराकार ब्रह्म में प्राप्त होने वाला सुख अनंत वाला है, परंतु वही निराकार ब्रह्म का सुख जब भौतिक विषयों से उत्थित होने वाले सुखों की तुलना में आता है, उनकी अपेक्षा में आता है, तो अनंत हो जाता है। इसी प्रकार से यहां पर भी प्रियतम शब्द को समझना पड़ेगा। ये नारद को प्रियतम कहा जा रहा है कि समस्त प्रिय भक्तों में श्रेष्ठ, प्रिय प्रियतर और प्रियतम, प्रियतम यानी कि समस्त भक्तों में अधिक प्रिय। फिर वहां पर अर्जुन को आदि पुराण में प्रियतम कहा, फिर वहां पर भागवत में भी आगे जाकर उद्धव को प्रियतम कहेंगे, फिर वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शंभु को कह दिया, इसका यह अर्थ है कि शंभु भी प्रियतम है, भगवान के सर्वाधिक प्रिय है। इनका यही तात्पर्य है कि वे समस्त जो है अपनी अपनी जब तुलना जब की जाती है एक दूसरे से, तो उनकी अपेक्षा में अधिक प्रियतम है। लेकिन आत्यंतिक दृष्टि से प्रियतम कौन है? आत्यंतिक दृष्टि से प्रियतम एकमात्र श्रीमती राधिका ही है। अल्टीमेटली दिस इज नॉट रिलेटिव, नॉट अल्टीमेट। इसीलिए देवर्षि नारद जो है अन्य भक्तों की तुलना में प्रियतम है। देवर्षि नारद से भी अधिक प्रियतम है अर्जुन, क्योंकि देवर्षि नारद में सख्य दास्य भाव है, दास्य भाव से सख्य भाव श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए अर्जुन देवर्षि नारद से भी अधिक प्रियतम है। समस्त जीवात्माओं में देवर्षि नारद भगवान को अत्यधिक प्रिय है, जैसे अम्बरीष है अथवा बहुलाश्व है अथवा अन्य जितने भी भगवान के भक्त हैं, उन समस्त भक्तों की तुलना में नारद उनके सर्वाधिक प्रियतम है। इसलिए नारद को यहां पर प्रियतम कहा जा रहा है, देवर्षि में प्रियतम हो। लेकिन नारद की तुलना में भी आदि पुराण में जो अर्जुन को प्रियतम कहा गया है, अर्जुन अधिक प्रियतम है। क्यों? क्योंकि अर्जुन सख्य रस में है और नारद दास्य रस में है, सख्य रस दास्य से श्रेष्ठ माना गया। परंतु अर्जुन से भी अधिक प्रियतम उद्धव है, क्योंकि उद्धव भगवान के अति घनिष्ठ है। अर्जुन जी का कभी ब्रज की गोपियों के साथ मिलन नहीं हुआ, तथा ब्रज की गोपियों के अंतःकरण में भगवान के प्रति कैसी समर्थावती है, कैसा प्रेम है, उस प्रेम का अनुभव अर्जुन ने नहीं किया जबकि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा व्रज भूमि। उद्धव वहां षण मास पर्यंत, छह महीने पर्यंत रहे हैं व्रज भूमि में, और उद्धव ने वहां पर अनुभव किया है श्री राधा ललिता विशाखा आदियों की जो विरह वेदना है श्री कृष्ण के लिए, उनका जो प्रेम है, उस प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इसलिए व्रज गोपियों के प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव होने के कारण, और वैसे भी उद्धव भगवान श्री कृष्ण के सदा साथ रहते हैं, जबकि अर्जुन भगवान कृष्ण के सदा साथ नहीं रहते थे, क्योंकि अर्जुन जी तो कभी कभी उनसे आकर मिलते थे द्वारका में, या कभी कभी जब भगवान द्वारका में आते थे तभी उन दोनों का मिलन होता था, जबकि उद्धव तो उनके सदा उनकी सेवा में तत्पर रहने वाले उनके साथ ही है। इसलिए उद्धव को सेवा का अधिक सौभाग्य प्राप्त है, सेवा का जो समय है, सेवा का अधिक समय उद्धव को मिला है, अर्जुन जी को उसकी तुलना में बहुत कम समय मिला है। और वैसे भी उद्धव जी का जो शरीर है वो कृष्ण के समान ही दिखाई पड़ता है, वो भी श्याम शरीर है। कृष्ण और उद्धव को यदि खड़ा रख दिया जाए सदाकर, एक दूसरों के पार्श्व में, एक दूसरों के मदन में यदि उनको रख दिया जाए, तो कोई पहचान पहचान नहीं पाएगा कि उद्धव कौन है और कृष्ण कौन है। यही समस्या तो व्रजगोपियों के सामने हुई कि जब उद्धव भगवान कृष्ण के आदेश से प्रेरणान्वित होकर प्रेषित होकर जब व्रजभूमि आए हैं तब गोपियों ने पहले तो यह समझा आपात दृष्टि से, जो बाह्य दृष्टि है उस आपात दृष्टि में प्रथम दर्शन होने पर यह समझा कि हमारे प्राणनाथ कृष्ण आ गए, लेकिन फिर जब देखा कि मोर पुच्छ नहीं है तब समझ गए और कुछ लजा भी गई उनको देखकर कि नहीं ये कृष्ण नहीं है, ये उनका कोई साथी लगता है। इसीलिए इन समस्त लक्षणों के होने के कारण एक तो उद्धव साक्षात कृष्ण के समान ही रूप वाले हैं, दूसरे उद्धव को भगवान श्री कृष्ण की निरंतर सेवा का सौभाग्य प्राप्त है जो अर्जुन को प्राप्त नहीं है, और तीसरा उद्धव को ब्रज गोपियों का जो प्रेम है उस प्रेम का अनुभव करने का अवसर मिला है जो कि अर्जुन को नहीं मिला। इन तीन कारणों से उद्धव भी सख्य रस में, अर्जुन भी सख्य रस में, लेकिन उद्धव अर्जुन से भी श्रेष्ठ है। इसे उद्धव को जो प्रियतम कहा गया वह अर्जुन के प्रियतम होने से भी अधिक श्रेष्ठ उनका प्रियतमत्व है, लेकिन उद्धव के प्रियतमत्व से भी अधिक श्रेष्ठ श्रीमती राधिका का प्रियतमत्व है। क्यों? क्योंकि उद्धव जी स्वयं जब वहां गए हैं भागवत में तो दशम स्कंध में उन्होंने कहा आसा महम चरण रेणु निशा महम श्याम, कि व्रज गोपियों के चरणों की धूल मुझे प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं यह इच्छा रखता हूं कि जन्म जन्म जन्मांतर तक मैं इस व्रज भूमि में एक लता पता के रूप में उतार हूं कि ये व्रज गोपियां कभी जो है मेरे ऊपर चलेंगी, मैं लता के रूप में जन्म जन्मांतर, एक ही जन्म नहीं जन्म जन्मांतर मैं लता पताओं के रूप में इस व्रज भूमि में जन्म ग्रहण करता रहूं, ताकि जब व्रज गोपियां अपने पैरों को अपने चरणारविंदों को मेरे ऊपर रखेगी तो उनकी धूल का स्पर्श प्राप्त करके मैं सार्थक हो जाऊंगा। और वह अवसर इस उद्धव के शरीर में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस समय तो मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, परम ज्ञानी हूं, और मुझ परम ज्ञानी बृहस्पति के शिष्य उद्धव को ये व्रज गोपियां अपने चरण रज प्रदान नहीं करेंगे, ये भी मैं जानता हूं। इसलिए उद्धव जी ने याचना की है भागवत में आशा हो चरण रहे तो विषाम श्याम। इसलिए जब उद्धव जी व्रज गोपियों के चरण रेणुओं को प्राप्त करने की अभिलाषा दिखा रहे हैं, और जब व्रज गोपियों में भी पादमों पर वचन कि सर्व गोपीषु सैवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा, उस पादमोत्तर वचन के आधार पर जब समस्त गोपियों में भी एकमात्र श्री राधा ही श्रेष्ठा है तो श्री राधा को ही अत्यंतिक दृष्टि से इन समस्त प्रियतमों से भी अधिक प्रियतमा भगवान श्री कृष्ण की मानना चाहिए, यही एकमात्र यहां पर निष्कर्ष निकलता है। तो यहां पे जो शंभू को कहा गया है शंभू की समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ है, शंभू श्री नारद की अपेक्षा श्रेष्ठ है, परंतु शंभू से भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि नारद की अपेक्षा श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि नारद पंचरात्र सात्वत तंत्र तथा रुद्र यामन इत्यादि जो तंत्र शास्त्र है उनमें श्री शिव ही नारद को भगवान श्री राधा कृष्ण की महिमा का तथा उनकी अंतरंग लीलाओं का ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए नारद के गुरु होने के कारण शिव उनसे श्रेष्ठ, परंतु शिव से भी श्रेष्ठ है अर्जुन, क्योंकि भगवान की द्वारका विद्या द्वारका लीला के नित्य परिकर, भगवान की द्वारका लीला के नित्य परिकर है। शिव जी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि भगवान की जो नित्य लीला मथुरा द्वारका अथवा वृंदावन इन तीन स्थानों में चल रही है उन तीन स्थानों में से किसी एक स्थान में जाकर उनके पार्षद के रूप में उनकी सेवा करें, वो तो केवल शिव लोक में बैठ के ध्यान ही लगा सकते हैं, भगवत धाम में जाकर पार्षद रूप धारण करके उनकी सेवा करने का अधिकार शिव को प्राप्त नहीं। इसलिए अर्जुन भगवान के नित्य परिकर होने के कारण शिव से भी श्रेष्ठ, ये सब बृहद भागवत अमृत में वर्णित हुआ है सनातन गोस्वामी के कारण, और अर्जुन से भी उद्धव श्रेष्ठ, उद्धव से भी व्रजगोपियां श्रेष्ठ और व्रजगोपियों से भी श्रीमती राधा श्रेष्ठ है, यही मानना पड़ेगा, और किसी भी प्रकार का समन्वय नहीं किया जा सकता और किसी भी प्रकार का अर्थगठन अथवा मत स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां पर जो देवर्षि नारद को प्रियतम कहा गया है केवल अपेक्षाकृत दृष्टि से तुलनात्मक दृष्टि से है, आत्यंतिक दृष्टि से नहीं है। और यदिमौ धनदात्मज तथा साधयिष्यामि अतीतम तन्मात्मना, यहां पर फिर और कहते हैं कौन कहते हैं भगवान कहते हैं कि उन नारद जी ने जो वचन दिया था कि लब्ध भक्ति भविष्यति वासुदेवस्य सान्निध्यम, कि हे कुबेर के पुत्रों आपको भगवान वासुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन मिलेगा तथा आपको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, यदि भी मेरा आपके साथ कोई संपर्क नहीं है। और यहां पर भी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यह कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करना चाहते थे, न मैं आप लोगों की ओर ध्यान ही देता था, क्योंकि मैं तो अपने भक्तों का चिंतन करता हूं, अभक्तों का चिंतन नहीं करता, कर्मी ज्ञानी योगियों का चिंतन नहीं करता, मैं भक्तों का चिंतन करता हूं। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए इस वाराणसी क्षेत्र में, इस काशी क्षेत्र में, कि जहां पर संन्यास वेशधारी ज्ञान मार्ग के अनुयायी जो अद्वैतवादी है, जो निराकार ब्रह्म की उपासक है, उनका जहां पर प्राधान्य है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री विष्णु ने, नारायण ने कहा है, विष्णु पुराण इत्यादि ग्रंथों में, नारद पुराण में यह कहा है कि नारद स्वामी वैकुंठ है, वह वैकुंठ में भी नहीं रहता, तथा जो ज्ञान तथा योगी है उनके भीतर भी मेरा निवास नहीं है। इसीलिए जो ज्ञान मार्गी है उनको सावधान होना जाना चाहिए, उनको अपने अपने जो निराकार ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला जो ज्ञान मार्ग है उसका परित्याग करके श्री शुकदेव मुनि और जो चार कुमार है जो कि परम निराकार ब्रह्म के जो कि परम उपासक थे, पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए उपासक थे, उनका ही अनुयायी बनना चाहिए इन ज्ञान मार्गियों को, क्योंकि यदि वे श्री शुकदेव गोस्वामी एवं जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इत्यादि जो चार कुमार हैं, वे जब ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, और उन ब्रह्म ज्ञानियों की तुलना में तो और कोई ब्रह्म ज्ञानी आ ही नहीं सकता इस ब्रह्मांड का। तो जब इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी श्रीमद भागवत की आत्मा रामश्च बनायो निर्ग्रंथा अनुक्रमे, इस श्लोक के आधार पर जब अपना अपना ज्ञान मार्ग तथा मुक्ति की इच्छा को छोड़कर तथा निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा को छोड़कर जब साकार ब्रह्म श्री कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा करने में प्रवृत्त हो गए थे, तो इस काशी वाराणसी के समस्त ज्ञानियों को भी उनका ही अनुसरण करना चाहिए, अपने आप को स्वाभिमान तथा अहंकार में यह नहीं मानना चाहिए कि हम सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। अरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी तो श्री शुकदेव महामुनि और चार कुमारों के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता, और जब उन्होंने ही ज्ञान को भेद समझकर भक्ति को ही एकमात्र श्रेष्ठ स्वीकार किया है, निराकार ब्रह्म को भेद समझकर जब साकार ब्रह्म को श्रेष्ठ समझा है, तो वर्तमान काल में ज्ञानी कौन है जो कि उन आदर्शों का उल्लंघन करके अपने अपने ज्ञान मार्गों को तथा अपने अपने उपास्य निराकार ब्रह्म को इस साकार ब्रह्म श्री कृष्ण के चरणारविंदों से भी अधिक श्रेष्ठ स्थापित कर सके, कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है नारद पुराण में कि नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी निवास नहीं करता, नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु च, और मैं योगी ज्ञानी कर्मी तथा संख्यवादियों के भी हृदय में निवास नहीं करता हूं, बिल्कुल ही नहीं, उसकी तो आशंका भी नहीं होती है। और उसके पश्चात मन भक्ताय प्रगायति, जहां पर नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम कृष्णम स्मरणम पाद सेवनम, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में वर्णित जो नवधा भक्ति है, इस नवधा भक्ति का अनुष्ठान करने वाले होने के कारण जो भक्त कहलाते हैं, जो ज्ञान का अनुष्ठान कर रहा है वो भक्त थोड़ी है, जो सकाम कर्म मार्ग का अनुष्ठान करता है, कर्मकांड का अनुष्ठान करता है वह भक्त थोड़ी है, जो ज्ञानकांड का अनुष्ठान करता है वह भक्त थोड़ी है, जो वेदोक्त ज्ञान कांड और कर्मकांड का उपास अनुष्ठान करता है वो भक्त नहीं है, वो तो ज्ञानी और कर्मी है, और जो योग मार्ग का पतंजलि के द्वारा निर्देशित योग का तथा न्याय वैशेषिक इत्यादि अन्य दर्शनों का जो अनुगामी है वो भी भक्त नहीं है, भक्त एकमात्र जो नवधा भक्ति का अनुष्ठान करता है वही है, और वही नवधा भक्ति का अनुष्ठान करने वाला भक्त ही वह जब संकीर्तन करता है तो मैं ज्ञानी योगी वैकुंठ इन समस्त का परित्याग करके मैं वहां भी चला जाता हूं। अरे ज्ञान योगियों की ओर तो मैं देखता ही नहीं हूं, उनका परित्याग करने की तो बात ही दूर रहे, परित्याग तब तक किया जाए जब पहले किसी स्थान पे हो फिर उस स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान में जाए, परित्याग करने का तो प्रश्न ही नहीं होता। कभी जब मैं ज्ञानी तथा योगियों के हृदय में जब मैं कभी रहा ही नहीं हूं तो फिर उनका परित्याग करने का प्रश्न ही कैसा। हाँ परित्याग करता हूं तो वैकुंठ का करता हूं, परंतु ज्ञानी योगियों का तो परित्याग भी नहीं करता, वे तो परित्याग करने की भी योग्य नहीं है, अरे वे तो परित्यक्त होने के भी, वे तो त्यागे जाने के भी योग्य नहीं है, कितने निकम है, कितने निकम है, त्यागे जाने के भी योग्य नहीं है ये ज्ञानी और योगी। जब मैं कभी वहां रहा ही नहीं, और इसका प्रमाण क्या है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कभी योगी तथा ज्ञानियों के भीतर निवासी नहीं किया है, उनके हृदय में कभी प्रकट ही नहीं हुए, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत का वह वचन, कौन सा वह वचन, साधवो हृदयम मह्यम साधुना हृदयम तो हम मद भक्ता वो जो कहा गया है मदन्यक्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनः सपि, साधु हृदय साधु मेरे हृदय है,
क्योंकि मेरे हृदय में मैं हमेशा मेरे जो भक्त हैं जो साधु हैं उनका ही चिंतन करता हूं, इसलिए साधु मेरे हृदय और साधुओं का हृदय मैं साधुना हृदय तो हम, क्योंकि मेरे भक्त निरंतर अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करते हैं, मुझको छोड़कर और किसी वस्तु का पदार्थ का व्यक्ति का अथवा ज्ञान कर्म इत्यादि मार्ग का चिंतन ही नहीं करते, और मैं भी एकमात्र मेरे भक्तों को छोड़कर और किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का चिंतन नहीं करता, इसलिए मेरा हृदय मेरे भक्त और मेरे भक्तों का हृदय मैं, और मदन व्यक्ति जानती ना हम देव्य मनागमी, वे मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त और किसी को जानते नहीं, मैं भी उनके अतिरिक्त और किसी ज्ञानी कर्मी योगी इत्यादि को जब जानता ही नहीं हूं, तो उन ज्ञानी कर्मी योगी इत्यादियों के हृदय में प्रवेश करने के पश्चात होना निवास करना और फिर उनको छोड़ देना, ये प्रश्न ही नहीं उठता। जब मैं उनको जानता भी नहीं हूं, उन ज्ञानी कर्मी योगी इत्यादियों के नामों को जब मैं नहीं जानता हूं, तो उन ज्ञानी कर्मी योगी इत्यादियों के हृदय में पहले प्रवेश करना, कुछ कार्यक्रम उनके हृदय में रखना, फिर उनका परित्याग करके जहां मेरा भक्त गायन कर रहा है वहां जाना, ये हो ही नहीं सकता। मैं उनको जानता ही नहीं, मैं तो केवल वैकुंठ में रहता हूं, वहां वैकुंठ का परित्याग करके जहां मेरा भक्त गायन करता है वहां पर आ जाता हूं। इसीलिए यहां पर भगवान के भक्तों की ऐसी महिमा है, और इसीलिए जो निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी है उनको सावधान हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने जब वाराणसी काशी क्षेत्र में आए थे, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व उस समय उन्होंने इस ज्ञान प्रधान क्षेत्र काशी में, इस मुक्ति प्रधान क्षेत्र काशी में मुक्ति को हटाकर भक्ति का स्थापन किया परम प्रयोजन के रूप में, और निराकार ब्रह्म को हटाकर भगवान श्री कृष्ण के त्रिभंग नरेंद्र परमवास्य रूप का स्थापन किया, एवं निराकार ब्रह्म की प्राप्ति स्वरूप जो साधन भक्ति जो ज्ञान मार्ग है उस ज्ञान मार्ग को भी हटाकर साधन भक्ति का यहां पर स्थापन किया था, जिस समय उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद को दशाश्वमेध घाट पर शिक्षा की है, दीक्षा प्रदान की है उस समय। इसीलिए आज भी जो परम कल्याण को प्राप्त करना चाहते हैं उनको मुक्ति, मुक्ति का साधन ज्ञान मार्ग तथा जो निराकार ब्रह्म है, इन तीनों का इत्याग करके प्रेम भक्ति को चरम प्रयोजन मानकर उसकी प्राप्ति स्वरूप साधन भक्ति को अपनाकर भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद विग्रह की सेवा में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, और अपने अपने जो तत्क गुण इत्यादि है अब सिद्धांत है कुसिद्धांत है उन समस्त का छठ तक क्षण परित्याग कर देना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम केवल चेतावनी दे रहा है, सावधान कर रहा है, यदि सावधान न हुए तो आपकी गति आप जाने। तत् तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मना, जिसका यह अर्थ होता है कि यदि श्री नारद महामुनि जैसे मेरे परम भक्त ने कह दिया है कि नलकुबर और वैग्री आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, तो वैसे महात्मा नारद के कहने पर मैं भी उनके वचनों का पालन करने में बाध्य हूं। यदि आपने मेरी भक्ति कभी नहीं की है, आप तो भोगी थे, आपको मुझसे कोई प्रयोजन भी नहीं था, मेरे धाम को प्राप्त करने से भी कोई प्रयोजन नहीं था, मेरी सेवा से भी कोई प्रयोजन नहीं था, न कभी आपने मेरी भक्ति नहीं की है, लेकिन फिर भी नारद जी ने जो आपको यह वचन दे दिया कि आपको मेरी प्राप्ति होगी, मेरी प्रेम सेवा की प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी, प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी, बस नारद जी के इस वचन को पूरा करने के लिए ही मैं आपको इस समय अपनी प्रेम भक्ति को दे रहा हूं, कि जिस प्रेम भक्ति को प्राप्त अनेक वर्ष तक अनेक लाखों लाखों कोटि कोटि कर्मों तक तपस्या करने वाले ज्ञानी योगी इत्यादि भी जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, उस प्रेम भक्ति को, उस दुर्लभ प्रेम भक्ति को, जिस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के बाद पश्चात ये जो ब्रह्म सायुज्य कैवल्य नाम की मुक्ति है, निराकार ब्रह्म में लीन होने वाली जो मुक्ति है, लीन कराने वाली जो मुक्ति है, निराकार ब्रह्म में लीन कराने वाली ब्रह्म सायुज्य कैवल्य मुक्ति भी जिस भक्ति के समक्ष अति तुच्छ हो जाती है, उस भक्ति जो कि उस ब्रह्म सायुज्य मुक्ति को भी अति लघु बना देती है, तुच्छ बना देती है, शुक्र नगण्य बना देती है, वैसे मोक्ष लघुताकृत श्री सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी सुदुर्लभा क्लेशकरी और शुभदा इन षड लक्षणों से समन्वित जो भक्ति है, वैसी भक्ति को आज मैंने तुमसे प्रदान किया। एकमात्र मेरे भक्त नारद जी के वचनों को पूरा करने के लिए, बल्कि तुम्हारा ऐसा कोई साधन नहीं है, न कि तुम्हारी ऐसी कोई योग्यता भी है कि जिसके ऊपर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आज मेरी प्रेम भक्ति प्रदान करता। इसीलिए भागवत में भी कहा गया है कि मुक्ति ददाति कर ही चित स्मर भक्ति योगम, अरे भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रसन्न होकर भुक्ति दे देते हैं, संसार के भोग दे देते हैं, और यदि अधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो मुक्ति दे देते हैं, संसार से सदा के लिए मुक्त करके 84 लाख योनियों का चतुरशी लक्ष योनियों में परिक्रमण का जो चक्र है उस चक्र को समाप्त करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैनिक आदि भौतिक आध्यात्मिक लाभ इन समस्त को प्रारब्ध प्रारब्ध मूल बीज इत्यादि जो 4 प्रकार के कर्म फल है इन समस्त को समाप्त करके ब्रह्म साहित्य मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अपनी जो प्रेमा भक्ति है वो प्रेमा भक्ति देने से पहले भगवान लाख बार विचार करते हैं मुक्ति तदा भी कर दीजिए। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी मुक्ति भी उन्होंने दे दी हो लेकिन भक्ति तो अपनी कदापि नहीं देंगे। जो प्रेम भक्ति है उसको तो वो कदापि नहीं देंगे, वो तो किसी किसी वृद्ध महाभाग्यवान को ही देंगे। इसलिए नारायण हम प्रशांत आत्मा को विश्वी महामने मुक्ताना सिद्धांत नारायण पारायण समस्त जो मुक्त जीव है ज्ञान मार्ग के द्वारा जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है उन समस्त मुक्त जीवों में भी जो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति करता है वह अति बिरला है, अति सुदुर्लभ है। इसलिए भक्ति की ही जो श्रेष्ठता है वह स्थापित होती है, भक्ति ही श्रेष्ठ है, मुक्ति अति तुच्छ है, श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ है, निराकार ब्रह्म अति तुच्छ है, ज्ञान मार्ग अति तुच्छ है। एकमात्र साधन भक्ति ही ज्ञान कर्म योग सांख्य इत्यादियों को जीवन देने वाली है। यदि साधन भक्ति भी न होती तो ये ज्ञान कर्म योग इत्यादि जो मार्ग है ये जीवित ही नहीं रह पाते, इतनी भी सामर्थ्य उनमें नहीं है। इसीलिए आज भगवान श्री कृष्ण एकमात्र नारद जी की भक्ति से प्रभावित होकर ही नंद और मणिग्रीव को अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यह नियम है, उनके बहुत सारे गुण हैं, सत्य है, समदर्शी है, कृपालु है, कृतज्ञ है, इत्यादि बहुत सारे गुण हैं भगवान के। लेकिन समस्त गुणों में उनका जो शिरोमणि गुण है, शिरोमणि गुण का अर्थ है उनका जो चक्रवर्ती गुण है जो कि अन्य समस्त गुणों को दबा देता है वह गुण है भक्त वात्सल्य। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का गुण है कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो सत्य कहते हैं, वो मिथ्या भाषण करा के नहीं करते, ये भगवान का एक गुण है। लेकिन मिथ्या भाषण न करना इस गुण से भी ऊपर उनका गुण है भक्त वात्सल्य, उनका जो भक्त के प्रति प्रेम है वो उस गुण से भी अधिक है। इसीलिए तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी महाभारत युद्ध के प्रारंभ में, क्या प्रतिज्ञा की थी, यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं धारण करूंगा। लेकिन भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं भगवान कोकेशव को शस्त्र धारण करवाते ही रहूंगा। इसीलिए भीष्म को अपना परम भक्त जानकर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरा करवा दिया स्वयं शस्त्र धारण करके। इसका यही तात्पर्य निकलता है कि भगवान का जो सत्य वचन नाम का गुण है वो सत्य वचन नाम का गुण नहीं रह पाया, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा का उनको भंग करना ही पड़ा, उनका सत्य वचन नाम का गुण अक्षुण्ण नहीं रह पाया, बरकरार नहीं रह पाया, और उस गुण को भी भक्त वात्सल्य ने दबा दिया। भक्त के मान की रक्षा करने के लिए, भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए, भक्त के दिए हुए वचन की रक्षा करने के लिए अपना दिया हुआ वचन भी तोड़ दिया, अपने अंदर भी मिथ्या भाषणकारी का जो दोष है वो लगा दिया। मिथ्या भाषण तो हुआ, पहले प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र नहीं धारण करूंगा, बाद में शस्त्र धारण किया, मिथ्या भाषण ही हुआ। भगवान ने अपना जो सत्य संकल्प तथा सत्य वाक नाम का जो गुण है उसको तोड़ के अपना जो भक्त वात्सल्य गुण है उसको स्थापित किया है, विश्व की प्रतिज्ञा की रक्षा करके। इसलिए यहां पर भी भगवान कह रहे हैं कि देवर्षि नारद जो कि मेरे महान भक्त हैं उनके वचन की मैं रक्षा करूंगा। यदि मैं नहीं चाहता था कि हे नंदकुमार और मणिग्रीव आपको मेरी भक्ति मिले जो कि बड़े बड़े ज्ञानियों योगियों को भी नहीं मिलती, पर आप तो भोगी हैं, अप्सराओं के साथ दंड नृत्य कर रहे थे, आपको कैसे मेरी भक्ति मिलेगी। लेकिन फिर भी देवर्षि नारद ने वचन दे दिया है तो मेरे न चाहने पर भी मैं बाध्य हो गया हूं, मैं पराजित हो गया हूं, मैं उनके वशीभूत हो गया हूं। इसलिए भक्ति कृपा से, भक्ति कृपा आपके ऊपर होने के कारण अब मैं आपको अपनी जो सुदुर्लभा प्रेम भक्ति है उस प्रेम भक्ति को देने के लिए भाग्य हो गया हूं, मेरे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं परतंत्र हो गया हूं। इति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? कौन से हाँ, वो जो है केवल गुण कर्म स्वभाव से संबंधित है, गुण कर्म और स्वभाव से ही संबंधित है, कुल से कोई संबंधित नहीं। हाँ, उनके भ्राता थे, उनके सगे भ्राता नहीं थे, उनके सगे भ्राता नहीं थे। नहीं ऐसी जाति परंपरा नहीं।
अमेरिका इन देश में हमारे साथ जाति जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई जो है क्षत्रिय है, कोई व्यापारी है, कोई
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। सवा दस डेढ़ घंटा हुआ
बिल्कुल एकदम नॉन स्टॉप समझिए।
अभी तो और भी सामग्री थी बोलने लायक, लेकिन समय जो है बाधित कर रहा है।
बहुत सुंदर प्रभु जी का जोर हुआ।